فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے، اور واقع میں فرعون اس ملک میں بڑا زور رکھتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دے. یہ تھی آیت نمبر 83 سے 86. اس کا عنوان لکھیے نوجوان طبقہ، یعنی ٹینیجرز مصلحتوں کی بجائے حق کے متلاشی ہوتے ہیں. یہ ہر دور میں رہا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ لوگ ینگز تھے. جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے تو تاویلیں ہی کیں اور پیچھے ہی ہٹنے کو اپنا مقدر بنایا، یہ کہہ کر کہ تم تو بس جب سے آئے ہو ہمارے لیے مشکلات ہیں. لیکن چند جوان کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو بھی یہی ہوا کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے اکثر لوگ جو تھے وہ ٹین ایجرز تھے یا ینگز تھے، آپ سے عمر میں کم از کم چھوٹے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ گہری سوچ رکھنے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے جو حق کی قبولیت کے نتیجے میں لینا پڑتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا تو پھر اس کے بعد تو بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، پھر خاندان سے کٹ جائیں گے، پھر گھر ٹوٹ جائے گا، پھر اس طرح سے. اور اس طرح بڑی عمر کے لوگوں کے اوپر مصلحتوں کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو نئی بات نئی سوچ کو ماننے میں تھوڑا سا تعامل ہوتا ہے. اس کے برعکس جو جوان لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل مصلحتوں سے خالی ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ انقلابی دعوت کو قبول کرتے ہیں، وہ کبھی روایت کے پابند نہیں بننا چاہتے. اور یہی وجہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ جوانوں میں سے تھے. سورت کہف میں آپ جوانوں کی بات پڑھیں گے. اسی لیے سب سے بہترین کریم پوائنٹ کسی جنریشن میں جوان قوم ہوتی ہے. آپ کہیں بھی کسی کو حق کا پیغام دیں، اگر آپ کے پاس چوائس موجود ہو تو آپ کو ہمیشہ ینگس کو قبول کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ بڑوں نے بات سن بھی لی تو مانیں گے کم، اور اگر مان بھی لی تو اللہ جانتا ہے کہ عمر کی کتنی مہلت ہے، وقت کیسا کمزوری ہے. لیکن جب کسی کو جوانی میں اللہ کی بات سمجھ آ جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ایک جوان شخص دین کی وہ خدمت کر سکتا ہے جو ایک شخص اپنی عمر کو گزارنے کے بعد نہیں کر سکتا. لیکن یقین کریں، آج کے دور میں جو مسلمانوں سے ایک خطا ہو رہی ہے وہ کیا کہ وہ جوانوں کو ہمیشہ لاسٹ، وہ جوانوں کو ہمیشہ بدتمیز، بے راہ روا اور خراب شخص تصور کرتے ہیں. کسی جوان کے بگڑنے کے پیچھے ضرور کسی بڑے کی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ بڑے اپنی غلطیوں کو ماننے کی بجائے جوانوں کو برا بھلا کہہ کے اپنے ہاتھ سے دور کر دیتے ہیں. ایسی چیزیں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتی ہیں. اور وہ کیا کہ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی طرح سے کسی ملک کے حالات بدلیں تو اس کے لیے ینگسٹرز کو آگے آنا ہوگا. یاد رکھیے، امت مسلمہ کی جو تقدیر بدلنے والی ہے نا، انشاءاللہ یہ جوانوں کے ہاتھ سے بدلے گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں سفید داڑھیوں سے زیادہ کالی داڑھی والے ہیں. آج بھی باپ جو ہے وہ بیٹے کو دیکھ کے داڑھی رکھتا ہے کہ اب تو بیٹے نے رکھ لی، اب مجھے بھی رکھنا پڑے گا. آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں تو اپنے حال حلیے میں، اور بچی پھر بھی پہنی اوڑھی صحیح طریقے سے اپنے آپ کو چھپاتی ہے. صرف یہ ہے کہ ہم ان کو کتنا کھل کے کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ لوگ اللہ کے دین کی طرف جلدی آئیں گے. اور ایک جوان کا آنا اللہ کے دین کو فائدہ دیتا ہے. تو یہاں اسی کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے پھر جو بات سمجھی اس کو مان لیا، اور اس کو مان کے پھر ان کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی کہ وہ اس چیز کے راستے میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں. یہ ہے آیت نمبر 78. اس آیت کا عنوان ہے ٹکراؤ کی بجائے خود کو محفوظ کر لو. جب فرعون کا ظلم و ستم بڑھا، اب بنی اسرائیل کے اوپر ان کے دین کی وجہ سے ظلم و ستم ہونے کا ڈر تھا، تشدد کے خطرے تھے. تو وقت کا تقاضا کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک جتا کے جا کے ٹکراؤ کریں اور کہیں کون ہوتا ہے میں روکنے والا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو. یہ کبھی کبھی حالات امت مسلمہ پہ آتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے دین کا پیغام شروع کیا تو اس وقت بھی آپ ہر نئے مسلمان کو یہی کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اپنا دین چھپانا. شروع میں لوگوں نے پہلے ہی دن خانہ کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھی. یہ وہ چیز ہے جو آج کے مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہے. آج جب ہم کرتے کچھ نہیں لیکن کچھ نعرے لگانے کے لیے ہم ایسے جملے ہی کم از کم بول دیتے ہیں، ہم اس کو تباہ کر دیں گے، ہم اس کو گرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ اسلام نہیں ہے. یاد رکھیے، اسلام ٹکراؤ کی بجائے اپنی ذات کی اصلاح اور اپنا تحفظ چاہتا ہے. آج اگر مسلمانوں کے اندر کوئی گن ہوگا، اگر خوبی ہوگی تو نکلیں گے. جب گن اور خوبی نہیں ہوتی تو صرف نعرے لگا کے تو قسمت نہیں بدلتی. یہ کہہ دینا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو گرا سکتے ہیں، ہم اس کو مار سکتے ہیں، صرف لوگوں کے خلاف نعرے لگا کے اور ان کے نام کے آگے مردہ بات لگا کے کبھی قوموں کی حالت نہیں بدلتی اور ایسے لوگ مرتے ہیں. جہاں اس وقت امت مسلمہ پہ دنیا کے کسی خطے میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں آپ دیکھیے گا کہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے, چاہے وہ چند لوگ کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کی سزا پھر پوری پوری بستیوں کو بھگتنی پڑتی ہے اگر مسلمان دوسروں کو برا کہنا چھوڑ دیں. ہاں اقیم الصلاۃ, رب سے تعلق قائم کرو, تم نماز پڑھ کے ذرا اللہ سے مدد کی دعا کرو, کیوں اللہ مدد نہیں بھیج رہا, ابھی وہ ایمان مطلوب نہیں ہے. مبشر المومنین, مسلمانوں کو نہیں ایمان والوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں. جب مسلمان ایسے کسی بھی حالات میں ہو تو اس کو اللہ سے تعلق بڑھانا چاہیے اور اس کو دوسروں کے ساتھ ٹکرانے کی بجائے اپنا راستہ ٹھیک کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ روڈ پہ جاتے ہیں نا, ہم سارا دن اسی اصول پہ کام کرتے ہیں. ہم روڈ پہ جاتے ہیں, کچھ گاڑیاں ادھر سے آ رہی ہیں, کچھ ادھر سے آ رہی ہیں, کچھ ہماری ہی سمت میں جا رہی ہیں, تو کیا ہم ٹکراتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ آئی کیوں میرے راستے سے, اس کو ہٹاؤ لگاؤ. آپ گاڑی کو لگائیں گے, اس کی بھی خراب ہوگی, آپ کی بھی خراب ہوگی, اس کو بھی خطرہ ہے, آپ کو بھی خطرہ ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بچ کے چلو, تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کرتے ہیں, تم اپنی سپیڈ بڑھا لو. اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ کوئی شخص تمہیں بہت تنگ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں جب آپ سلو سپیڈ سے چلتے ہیں تو ہر ایک آپ کے آگے رہتا ہے, اور جب آپ تیز سپیڈ سے چلتے ہیں تو سب آپ سے پیچھے رہتے ہیں. یہ اصول مجھے کسی نے تب سکھایا تھا جب میں ڈرائیونگ سیکھی کسی وقت میں, لیکن میں نے اسے زندگی کا ایک بڑا گہرا اصول سیکھ لیا. تم تیز چلو گے تو لوگ تمہارے پیچھے جائیں گے, اور تم سست رہو گے تو لوگ تمہارے آگے آئیں گے. یہی دنیا کا اصول ہے. آج مسلمان تیز چلنا تو شروع کرے, یہ لوگ سارے اس کے پیچھے آ جائیں گے. آج ہم ہیں سست, ہمیں کام نہیں کرنا, میری سرچ نہیں کرنی, ہمارے اندر صرف ایک ہی شوق ہے وہ کھانے کا, اور اس کو بڑھا لیتے ہیں پہن کے اور بس گھر بنا لیے, تو پھر ایسے مسلمانوں کو تو لوگ ہمیشہ ہی ان کے آگے لگے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ ٹکراؤ کی بجائے خود کو محفوظ کر لو. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب, آپ نے تو فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دے دیے, اے ہمارے رب اسی واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں, اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لا پائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو چکھ لیں. قالا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں. یہ تھی آیت نمبر 88 سے 89. اس کا عنوان ہے آخرت کی طرف توجہ کرنے کی قیمت, دنیاوی رونقوں میں کمی. آج یہی شکوہ کرتے ہوئے مسلمان بھی دکھتے ہیں, اور وہ کیا کہ اللہ نے ان کافروں کو اتنا کیوں نوازا ہے جب اتنا ہے, اور یہ سارا مسلمانوں ہی کے تو خلاف لگاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کا پھل دیتا ہے, اور جو لوگ آخرت کی فکر کرنے لگتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دنیا کا سامان تو پھر پیچھے ڈالنا ہی پڑتا ہے. اسی طرح لوگ جو دنیا کے اندر زیادتی چاہتے ہیں ان کی آخرت کم ہوتی ہے, جو آخرت کو کم کریں گے ان کی دنیا بڑھتی جائے گی. لیکن کسی کے پاس دنیا کی مال کا جمع ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی سے دیا. اور یہ جو بات تھی نا کہ تاکہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں, یہ اصل میں مال کا مس یوز ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بھی انسان کو, وہ مسلمان ہو یا کافر, جب اس کو مال یا کوئی ٹیکنالوجی یا اس کے کوئی سکل دیتا ہے تو اسے مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسانیت کو فائدہ ہو. لیکن افسوس کیا ہے کہ جب بیچ میں اللہ کی ذات نکل جاتی ہے تو وہی چیزیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو سکتی تھی وہ نقصان کے لیے ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ماڈرن ریسرچز کے نام پہ, ویپنز کے نام پہ, انرجیز کے نام پہ جو جو چیزیں بنتی ہیں اسی سے دنیا پلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ پھر ویپنز کے ذریعے سے ایسی چیزیں بنا لی جاتی ہیں کہ جس کو رکھنا دشوار ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اپنے ہی رکھے ہوئے ہتھیار جو ہیں یا ان کے جو بومز ہیں وہ چل جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انسانیت تباہ ہوتی ہے. یہ ہے مس یوز کرنا. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے, اس کی شو آف اور اس کو دکھا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا ایسے بھی ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کے دل میں بھی یہ طلب پیدا ہو جائے کہ اچھا فلاں کا گھر اتنا اچھا ہے, میرا اچھا کیوں نہیں, چلو میں بھی خوب محنت کر لوں دن رات تاکہ میں بھی اچھا گھر بناؤں. یہ بھی راستے سے روکنا ہوتا ہے. لیکن وہ شخص جس کی نظر آخرت پہ ہوگی, نہ وہ دنیا داروں کے بڑے بڑے گھروں اور مال کو دے کے ترسے گا, اس کو پتا ہے کہ مجھے وہاں لینا ہے. کسی کا کسی دوسری جگہ گھر بن رہا ہونا تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں آج کہاں رہ رہا ہوں. بعض دفعہ لوگ کئی کئی سال تک چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, کیوں؟ کہ ان کی بڑی حویلی بن رہی ہے. وہ بڑے خوشی سے رہتے ہیں کہ ان کو پتا ہے ہمیں وہاں جانا ہے, کیونکہ اگر آج بڑی جگہ بیٹھیں گے تو کل وہ نہیں جا سکیں گے. اسی بات کو تھوڑا پھیلا لیجئے, یہ دنیا چھوٹا سا ایک اپارٹمنٹ ہے, اس کے بدلے جو اپنا آخرت کا گھر بلڈ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں سے مال بھیجیں گے تاکہ وہاں لگتا جائے, اور جو یہاں بھی پاؤں پھیلائے گا پھر وہاں کے پاؤں تو کچھ نہ کچھ سمٹ ہی جائیں گے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, इसके सिवा कोई माबूत नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में से हो गया, बस आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू इनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं। हकीकत यह कि बहुत सारे लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये थी आयत नंबर 90 से 92। इसको अनवान लिखिए, फिरौन ने दरिया को देखा, खुदा को नहीं देखा। यहाँ फिरौन के डूबने की बात है जो पीछे भी हम पढ़ चुके, और उसने ये सोचा था कि मूसा ने दरिया में जो रास्ता बनवाया है अल्लाह के हुक्म से, ये रास्ता मेरे भी लिए, लेकिन वो ये भूल गया कि जो रास्ते हक वालों के लिए निजात के होते हैं वही रास्ते जो हैं बातिल वालों के लिए पकड़ के भी हो जाते हैं। यहाँ फिरौन के डूबने और उसकी लाश को बचाए जाने की बात है, अल्लाह का ये वादा पूरा होके रहा। आज भी आप देखिए कि 1400 साल गुजरने के बाद कुरान पाक में जब हम ये आयतें पढ़ते हैं, और ये बात हो सकता है उस वक्त नहीं पता थी, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त फिरौन की लाश डिस्कवर हो चुकी है। 1898 में ये डिस्कवर हुई थी। फिर उसके बाद 1975 में एक सर्जन था मोरिस बेकाई, उसको इजाजत मिल गई थी कि तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम करना या उसको देखना। इस तरह उसने फिर एंडोस्कोपी के जरिए और कुछ रेडियोथेरेपी के जरिए से जो चीज रिपोर्ट में दी थी वो क्या थी कि ये शख्स या तो डूब के मरा है या वॉयलेट शॉक की वजह से मरा है, यानी पानी के अंदर जो लहरें होती हैं उसके शौक से मरा है। और उसके बाद से आज तक आप देखिए कि इसकी लाश जो है काहिरा के म्यूजियम में रखी हुई है, दुनिया में घुमाई जाती है, फन बन गया, माल बन गया। मैं खुद गई, 100 पौंड वहां के जो थे उसकी टिकट थी अंदर जाने की, मेरे मियाँ ने तो जाने ही नहीं दिया, उन्हें कहा कि मैं इस काम के लिए पैसे नहीं लगा सकता, बाहर से देख लो जो देखना है, अंदर हम नहीं गए। करीब थे, सामने थी वो, उसके अंदर थे लेकिन मनी दे के अंदर इन्होंने नहीं जाने दिया कि इबरत लेनी है तो बाहर बैठ के ले लो। आज कितने लोग हैं जो इबरत के लिए लेते हैं, आज उनके पैरामिड्स को देखिए, वहां लोग तस्वीरें बनाते। आज जहां फिरौन की बात होगी, उसके माल की बात, उसके कंगनों की बात, कितने लोग हैं जो उसको एक सरकश के तौर पे पेश करते हैं। यही फर्क है इस्लाम के हिस्ट्री पढ़ाने के और आम दुनिया की हिस्ट्री पढ़ाने के लोग फिर उन चीजों को हीरो बना लेते हैं। आज भी आप देखिए कि इजिप्शियन कल्चर के ऊपर मिस्री कल्चर बहुत छाया हुआ है, उनके निशान, और वो बिल्कुल इसको बुरा नहीं समझते, क्योंकि जब कौमें आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह के पैगाम से दूर होती हैं तो उनके लिए असल चीज माल कमाना होता है। उनको पता है अगर ये चीजें हम पेश करेंगे सारी दुनिया से हमारे पास लोग आएंगे, और उसका नतीजा फिर यही होता है कि असल चीज फिर इंसान की जिंदगी से निकल जाती है। वलकत बवाना बनी इसराइला, और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया, और हमने इनको पाकीज़ा चीजें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया यहाँ तक कि इनके पास इल्म पहुँच गया। यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इन उमूर में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। ये थी आयत नंबर 93। इसका उन्वान लिखिए, वाज़ेह रहनुमाई होते हुए भी वो राह से बेराह हो गए। इन आयतों में एक चीज हाईलाइट करने की आप कीजिएगा, ये हिस्सा फमख्तलफू हत्ता जाहुमुल इल्म, इसी आयत के अंदर जो है इसको हाईलाइट कीजिए। ये है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई जो हर दौर में अपना आप मनवाती रही, और वो क्या था कि जब कौमें हिदायत से रहनुमाई से दूर होती हैं तो वो मुत्तहिद होती हैं। जब तक बनी इसराइल फिरौन के दबाव में थे वो मिले हुए थे, एक थे, मिल के रहते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको तौरात की सूरत में एक रहनुमाई दी, जब इल्म आ गया तो उसके बाद वो बेराह रो कैसे हुए, आपस का इख्तलाफ। अल्लाह का कलाम मौजूद था लेकिन उन्होंने इसी कलाम की तशरी और इसकी तावीलात में इख्तलाफ किया और टुकड़े टुकड़े हो गए, और उन्होंने अपने 12 ग्रोह बना लिए। तो यही हर दौर का मसला है कि जब तक कोई कौम अल्लाह के उतारे हुए दीन यानी अल इल्म पर कायम रहती है तो इसमें इत्तेफाक और इत्तेहाद होता है। आज सहाबा किराम जो इसकी बेहतरीन मिसाल है, लेकिन बाद में जब लोग इस अल इल्म की तशरी में इख्तलाफात शुरू करते हैं, कोई एक फिक्र बयान करता है, कोई दूसरी करता है, कोई एक राय लेता है, कोई दूसरी लेता है, तो उसके बाद फिर लोग अपने अपने मसलक को बड़ा साबित करने के लिए, दूसरे के मसलक को गलत करने के लिए आपस में बिखरने लगते हैं। सहाबे किराम के अंदर भी इख्तलाफ राय होता था, कोई बड़ी बात नहीं है, हम पीछे पढ़ चुके, तो कई मौके ऐसे आए बदर के कैदियों को मारा जाए या उनसे फिदिया लिया जाए, अबू बकर और उमर की राय फर्क हुई थी, कोई हर्ज नहीं है, और बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद है, लेकिन जब उनके सामने अल्लाह के नबी की बात आती थी तो सब खामोश हो जाते। बस यही असूल आज भी है, हर एक इख्तलाफ कर सकता है लेकिन जहां सही हदीस आ जाए वहां फिर हदीस को मानना है। लेकिन जब लोगों की मोहब्बतों के मेयार बदल जाते हैं, जब हमारी मोहब्बतों का महवर अल्लाह और उसके रसूल की बजाय कुछ शख्सियात बन जाती हैं, कुछ नाम बन जाते हैं, तो फिर हम दलील को तो कुर्बान कर देते हैं लेकिन अपनी राय को कुर्बान नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों का फैसला फिर दुनिया में नहीं होगा, ये तो क्यामत के दिन पता चलेगा कि किसकी बात सच थी और किसकी बात झूठ थी। फइन कुंता फी शक्किन, बस अगर आप इस बारे में शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हर हरगिज शक करने वालों में से ना हो जाए और ना इन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह तआला की आयतों को छुटलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाए। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात हक साबित हो चुकी है वो ईमान न लाएंगे को इनको तमाम निशानियाँ पहुँच जाए जब तक के वो दर्दनाक अजाब को ना देख लें। फलौला कानत क़रियतुन, कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना इसको नफा देता, सिवाय कौम यूनस के। जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनिया की जिंदगी में इनसे टाल दिया, इनको एक खास वक्त तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए जमीन के सब लोग ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं कि वो मोमिन ही हो जाएं? हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, और अल्लाह तआला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। ये थी आयत नंबर 94 से 100। इसके दो तीन उनवान थे। पहला उनवान लिखेंगे हक का इस्तकबाल हमेशा एराज और मुखालफत के साथ हुआ। जब कोई बंदा हक लेके आता है ना तो ये सोचता है कि देखना अब लोग मेरे गले में फूलों के हार डालेंगे क्योंकि मैं उनके लिए इतनी अच्छी चीज लेके आ गया, ये तो उनके लिए जिंदगी है, ये तो इनके लिए इनकी मुश्किलात का हल है। लेकिन याद रखिए हक की एक ही शान रही है कि लोगों ने शुरू में उसे एराज किया, लोगों को मुश्किल लगता है। वो मिलावटी दीन जिसके अंदर तावीलात होती हैं, जिसके अंदर सब कुछ जायज होता है, वो तो लोग खुशी खुशी ले लेते हैं ताकि उनके दिल को भी तसल्ली रहे इस बात की कि हम दीन के नाम पे कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो हक होता है जिसके अंदर कोई आमेजिश ना हो, जो सच हो, जो अपनी जात की तब्दीली का दीन हो, जिसके अंदर सारा वजन दलील का होता है दावों की बजाय, ऐसी चीज को फिर लोग कबूल नहीं करते। और जब कभी कोई अल्लाह की तरफ बुलाने वाला इन हालात को देखता है तो उसका दिल तंग होने लगता है, वो सोचता है शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, शायद मेरा ही काम गलत है। अल्लाह ताला आयतों में ये बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप गम ना कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। हर पैगंबर के साथ यही हुआ कि लोगों ने हक का इस्तकबाल एराज और मुखालफत से किया। दूसरा टॉपिक लिखेंगे टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो नफ्स के नाम की चीज रखी है ना, इबलीस ने तो इसको ईगो प्रॉब्लम बना ही लिया था, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ सूरत इंसानों में भी दिखती है। हक बात सामने आती है, अकल कहती है मान जाओ ये सच है, लेकिन उसको मानने के लिए इंसान को जो देना पड़ता है वो अपनी अना देनी पड़ती है। और बास लोग भी इस रवैये के साथ होते हैं कि टूट तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि झुकने में हम छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन एक कौम जिसने इस बात से एराज किया था वो थी कौम यूनस। ये वाहद कौम है कि जिसके ऊपर अजाब के असरात शुरू हो गए, इसके बाद भी वो टल गए। अल्लाह ताला की एक सुन्नत है और वो क्या है कि जब तक नबी किसी बस्ती में रहता है वो कौम अजाब से बची रहती है, और जब नबी धमकी दे के उस बस्ती को छोड़ जाता है तो फिर उस कौम के अजाब से बचने की कोई सूरत नहीं रहती। आगे इंशाल्लाह सूरह हूद पूरी इसी थीम के ऊपर चलेगी, लेकिन ये कह सकते हैं आप कि नबी जो है किसी बस्ती में रूह की तरह होता है। जैसे बदन में रूह होती है तो वो बदन जिंदा है, तो रूह चली गई तो बदन भी मुर्दा हो गया। जब कोई नबी जाता है तो बस बस्ती मुर्दा होगी। लेकिन कौम यूनस ऐसी कौम थी कि जब इन्होंने अजाब के असरात देखे तो सच्चे दिल से तौबा की, अपने बुतों को छोड़ा, अपने गुनाह की चीजों को छोड़ा, जंगलों में चले गए, सदका खैरात किया और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आए। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसके कुछ असबाब थे पीछे, लेकिन हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि अगर वाकई किसी वक्त इंसान उस किनारे पे पहुंच चुका हो कि जहाँ अजाब का जहूर तक शुरू हो गया हो, अगर उस वक्त भी इंसान सच्चे दिल से ईमान लाए तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। कभी गलती करके गलती पे जमना नहीं चाहिए। देखिए गलती हो जाती है लेकिन गलती की नहीं जाती। गलती करके बंदा गुजर सकता है लेकिन गलती पे ठहर नहीं सकता। गलती क्या है? गंदगी का एक ढेर, बदबू वाली चीज। कोई मजबूरी में ताफुन वाली जगह से गुजर सकता है लेकिन कोई वहां रहना पसंद नहीं करता। यही चीज हमने इन आयात में सीखी। अगला टॉपिक इसमें आप लिखेंगे जन्नत की अबदी नेमतें इख्तियारी इतात का बदला है। कायनात में हम देखते हैं कि हर चीज अल्लाह के हुक्म को मान रही है, सूरज चांद सितारे सब कुछ, इसलिए उनके लिए न सजा है न जजा है। उनको ये नहीं कहा गया तुम्हें जन्नत के फल फूल मिलेंगे, ना उनके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में कुछ खाना पीना रखा। सारी रानाइयां इस दुनिया में इंसान के लिए हैं। इसी तरह कल जन्नत जो है वो सिर्फ इंसान और जिन्नों के लिए है। क्यों? कि उनको इख्तियार दिया गया। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि बाकी कायनात जो मजबूरन या आप कह लीजिए कि इख्तियार के बगैर जो इताअत कर रही है तुम अपने इख्तियार के साथ कर लो, बाय चॉइस। अब देखिए कहीं आप मजबूर कर दिए जाते हैं आपको वहां जाना ही पड़ता है, कहीं आपको चॉइस दी जाती हो कि आपकी मर्जी आप आ जाए तो ना आए, जब आप तब जाते हैं ना तो दूसरे को ज्यादा खुशी होगी। एक यह कि नाम लेके कहा जाता है ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। और एक ये कि ठीक है आप में से जो भी करे, फिर जो करते हैं ना उसकी शान बढ़ती है। यही दुनिया का इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें फोर्स नहीं किया, क्या पॉसिबल नहीं था कि जब बच्चा पैदा हो तो साथ ही उसके साथ एक डंडा भी हो और वो गलत काम करे और उसके सर में जोर से वो पड़े। जैसे आप देखिए हमारी आंखें खुद ही चपक रही है ना, हमारा दिल काम कर रहा है, हमारा जिस्म काम कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि अजान होती और खुद बहुत हमारे कदम उठते, हम वजू करते, फिर जो रुकू और क्याम और सजदाम करते हैं, ये होने लगता? हो सकता था, 1 मिनट में हो सकता था। आज लोगों ने रिमोट कंट्रोल चीजें बना ली, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था हमारे रिमोट अपने हाथ में रखता, लेकिन ये मकसद खत्म हो जाता, फिर तो इम्तिहान ही खत्म हो गया। तो यहाँ असल चीज फिर इख्तियार का अच्छा इस्तेमाल है। कुल इन जुरुमा सफ़ समावाती वल अर्द, आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या चीजें आसमानों और जमीन में है, और जो लोग ईमान नहीं लाते इनको निशानियां और धमकियां कुछ फायदा नहीं पहुंचाती, सो वो लोग सिर्फ इन लोगों के से वाकयात का इंतजार कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। आप फरमा दीजिए अच्छा तो तुम इंतजार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, फिर हम अपने पैगम्बरों और ईमान वालों को बचा लेते हैं, और हमारे जिम्मे ही क्या है कि हम ईमान वालों को निजात दिया करें। आयत नंबर 101 से 103, इनका उनवान है निशानियों की तौजीह करके मुतमईन हो जाते हैं। तौजीह कहते हैं रीजनिंग को इंग्लिश में, कि जब कायनात में कोई भी काम होता है तो उसकी रीजनिंग करते हैं। ये इसलिए डिजास्टर आया कि वो आजकल हवाओं का ये रुख है, ये इसलिए इस साल बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं कि वो मूनसून चल रहा है, ये इसलिए हुआ कि वो पानी में प्रेशर बढ़ रहा है, ये जलजिला इसलिए आया कि इसके नीचे वेलकेनोज है और इसके नीचे लावा है। ये होता है निशानियों की तावील करना, और असल चीज भूल जाते हैं। ये आजकल इसलिए बीमार है कि फ्लू फैला हुआ है, ये आजकल इसलिए कि वायरस फैला हुआ है। ये जो कैफियत होती है ना, ये बंदे को असल पैगाम पे नहीं जाने देती। हर वक्त देखिए कि हम दुनियावी सहारे ढूंढते हैं, ये इसलिए हुआ कि इसके साथ ये हुआ, ये बच्चा इसलिए हुआ कि इसको मैंने बचपन में केयर नहीं की, ये बीमार हो गया, ये मेरे शौहर के साथ ये मामला हुआ कि ये मेहनत बहुत करते थे तो ये हो गया, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन असल जो उसके अंदर एक पैगाम होता है ना, उसको नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला ने यही सोच दी कि तुम मुतमईन हो जाने की बजाय उसके पीछे अल्लाह की मर्जी जानो कि ये मुश्किल तुम पे क्यों आई। कुल या युहन्नास इन कुंतुम फी शक के मिन दीनी, आप कह दीजिए लोगो अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो, तो मैं इन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज करता है, और मुझको ये हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊं। व नकीम वजह कल दीन हनीफा, और ये कि अपना रुख यकसू होकर उस दीन की तरफ कर लेना और कभी मुशरिकों में से ना होना, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत मत करना जो तुझको ना कोई नफा पहुंचा सके और ना कोई जरर पहुंचा सके, फिर अगर ऐसा किया तो तुम इस हालत में जालिमों में से हो जाओगे, और अगर तुमको अल्लाह को तकलीफ पहुंचाए तो बजुज उसके और कौन है जो इसको दूर करे। वहीं यमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, और इसके बरक्स वहीं युरीद कभी खैरिन, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो इसके फजल का कोई हटाने वाला नहीं, वो अपने फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे, और वो बड़ी मगफरत और रहमत वाला है। आप कह दीजिए कि लोगो तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच चुका है, इसलिए जो शख्स राह रास्त पर आ जाए बस वो अपने वास्ते राह रास्त पर आएगा, और जो शख्स बेराह रहा तो उसका बेराह होना उसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। वत्तबी मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह वहुवा खैरुल हाकिमीन, और आप इसका इत्तबा करते रहिए जो आपके पास वही भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सब फैसला करने वालों में सबसे अच्छा है। इन आयात का उनवान लिखेंगे, पहला उनवान है मौत, फिर स्लैश डालेंगे, क्या है मौत? इंसान की बेबसी और अल्लाह की कुदरत का तारुफ। सच मौत की सूरत में जो बात सबको समझ आती है वो यही है कि हम बेबस हैं, और ये समझ आती है कि अल्लाह का पूरा इख्तियार है। दवा खा लें, चेकअप्स करवा लें, डॉक्टर्स के साथ हर वक्त कंसल्ट करते रहें, मौत आनी है तो आके रहेगी। जिसने बीमारी की दवा इजाद कर ली उसने अभी तक मौत की दवा क्यों इजाद नहीं की? और हम हर दिन रात हर लम्हे कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद कुछ लोगों के दुनिया से जाने की खबरें सुनते हैं, और अखबार पढ़ लें तो रोज हजारों लोगों के मरने की खबरें आपके सामने होती हैं। ये वाक्य जो इतना छूता था, इतनी कसरत से होता है तो हम इसके ऊपर कोई गौर नहीं करते, लेकिन जरा सोचिए एक इंसान आपके सामने था, अब नहीं रहा, कहाँ गए वो लोग? चलता फिरता खाता पीता इंसान अब बिस्तर पे बेबस बना हुआ है, कहाँ गए इख्तियार, कहाँ गए दावे, कहाँ गए नारे, कहाँ गए वो मोहब्बतें करने वाले? इस बात की दलील के तुम बेबस हो, जब रब लेके जाना चाहेगा कोई रोक नहीं सकता। जिसको इस बात का यकीन आ जाएगा ना, उसको फिर इसका भी यकीन आ जाएगा कि अल्लाह मुझे कुछ देना चाहे तो कोई ले नहीं सकता, और अगर अल्लाह मुझे कुछ ना देना चाहे तो कोई मुझे उससे छीन के नहीं दे सकता। यही वो अकीदा है जिसने मुसलमानों को जुर्रतमंद किया था, यही वो सोच थी जो मुसलमानों को मैदान जंग में जाके भी दबने की बजाय मुकाबला करने के तैयार करती थी। आज के मुसलमान की हालत इससे उलट है, उसने नफा और नुकसान दूसरों के हाथ में सोच लिया, उसको ये लगा कि असल जो है वो चीज दूसरों के हाथ में है और बस मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और अल्लाह के पास तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाना है और नफा नुकसान दूसरों से लेना है। नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान दूसरों की मौत से भी इबरत नहीं लेता। दूसरा टॉपिक इन आयात का लिखेंगे, हक आ गया, अब जो चाहे माने और जो चाहे ना माने। सूरत के आखिर में हुज्जत तमाम की जा रही है। हक आ गया, सच पता चल गया, अल्लाह की मर्जी मालूम हो गई, जिंदगी के लिए यही तुम्हारी एक बेहतरीन चीज है, तुम्हारे सारे दुखों की बीमारियों की दवा यही है। कौन है जो इसके साथ ताल्लुक जोड़ना चाहेगा आगे भी, और कौन है जो इसी पे अपने ताल्लुक को तोड़ लेगा। इसके साथ ही पारे को खत्म करूंगी। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।